प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार, नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार।
बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सबेते रहना है।
प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।
विशेष बाबा के ऐसे शोपीस जो विश्व के शोकेस में बाबा ने श्रृंगार करके जिनको रखा हुआ है, ऐसे शोपीस बाबा के घर में पहुंचे हैं और अधिक श्रृंगार करने के लिए। तो ये ब्यूटी सलून भी है ना बाबा का घर, जहां हमारा श्रृंगार होता है। और इस श्रृंगार को और करने के लिए, और आगे बढ़ाने के लिए, कल तो हमारा श्रृंगार हुआ ही, इसे और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि श्रृंगार में बहुत सारी चीजें होती है ना, तो आज हम सबके बीच में है हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी जी। हम दीदी आपका स्वागत करते हैं करतल ध्वनि से, अच्छी तरह से ताली बजाइए, करतल ध्वनि से हम दीदी जी का स्वागत करते हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप से हमारा निवेदन है कि दीदी आप हमें बताएं कि ब्राह्मण जीवन में रहते हुए श्रीमत नियम और मर्यादाएं, उनकी पालना का क्या महत्व है। जब हम ब्राह्मण जीवन में रहते हैं तो ऐसे नहीं बस सफेद वस्त्र पहन लिए, लेकिन श्रीमत और नियम मर्यादाओं का क्या महत्व है। मैं दीदी जी का बहुत संक्षिप्त में परिचय दे रही हूं।
कल दे
आप दीदी थोड़ा सा, आप ब्रह्मा कुमारी की जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, महाराष्ट्र आंध्रा और मुंबई, साथ साथ तेलंगाना की आप जोनल हेड हैं। सोशल सर्विस विंग जो REIRF की हमारी विंग है, उसकी आप चेयरपर्सन हैं। और कहते हैं हिम्मते मर्दा मददे खुदा, तो दीदी के अंदर इतनी हिम्मत है, आप उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और आपके जीवन में आपको हिम्मत रख बाबा की मदद का बहुत बहुत गहरा अनुभव है। सन 1965 में जब आपने साकार बाबा को, बाबा का तेजस्वी स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, ओजस्वी स्वरूप जब बाबा को देखा, तो तुरंत देयर एंड देन वहां फैसला किया कि मुझे जीवन बनाना है तो बाबा जैसा बनाना है, और बाबा की आज्ञाओं पर चलकर औरों का भी जीवन बनाना है। दीदी जी के जीवन की मुख्य बात कि दीदी सदा, हमने जो दीदी को देखा मुंबई में साइंस सेंटर पर, ब्रिजेंद्रा दादी जी जो साकार बाबा की लौकिक बहू थी, उनके साथ दीदी जी को रहने का बहुत लंबे समय तक सौभाग्य मिला। और दीदी जी सुनाया करती हैं कि ब्रिजेंद्रा दादी सदा बाबा के लौकिक और अलौकिक जीवन के अनुभव बहनों से शेयर करती थी, और दीदी वो हम छोटी बहनों से फिर शेयर किया करती थी, जिनका हम अक्सर आनंद लेते हैं। और दीदी ने ब्रिजेंद्रा दादी जी से, दादी जानकी जी से, बड़ी दीदी से जिनका आपके साथ बहुत स्नेह था, बहुत कुछ विशेषताएं सीखी, अपने में भरी, और आज हम देख रहे हैं आज वे एक संयुक्त प्रशासिका के रूप में इस विद्यालय में कार्यरत हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेकर के दीदी जी से निवेदन करूंगी कि आप विषय को स्पष्ट करें। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी जी।
ओम शांति। वैसे हर एक कुल की अपनी अपनी मर्यादा होती है, लौकिक कुल में भी हर एक कुल की अपनी अपनी मर्यादा होती है। जो कुल के साथ साथ चलते हैं, मर्यादाओं पर चलते हैं, उनको सभी प्यार भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं। और जो लौकिक कुल की भी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, उनको कुल में से निकाल देते हैं, वो अकेले हो जाते हैं, उनसे लेन देन बंद कर डालते हैं, और वो अकेलापन उनको अकड़ता है, खाता है। बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसीलिए हर एक मनुष्य अपने कुल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पीछे चलता है। अभी आई हम लोगों की बात, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें दो कुल की मर्यादाएं संभालनी है, एक है दैवी मर्यादा और दूसरी है ईश्वरीय मर्यादा। बाबा ने हम बच्चों को अमृत वेले से लेकर रात तक सोने तक सब मर्यादाओं की लकीर खींच के दिया है, जिसको लक्ष्मण रेखा कहो या लक्ष्य तक पहुंचने वाली रेखा कहो। अगर उन मर्यादाओं का कोई उल्लंघन करता है तो यहां किसी को कुल में से निकाला नहीं जाता है, पर वो स्वतः इस कुल से निकल जाता है, क्योंकि मर्यादा में चले गए तभी कुल में रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते। उनका मन खाता है, उनको ये धरनी गर्म लगती है, पर स्वतः ही वो किनारा कर लेते। तो बाबा ने जो हमको मर्यादा कहो, श्रीमत कहो, आज्ञा कहो, जो जो दी हुई है हरेक बात के लिए, हरेक कर्म के लिए, हरेक कर्म इंद्रियों के लिए बाबा ने हमें मर्यादाएं सिखाई हुई। क्योंकि देवी देवताओं का गायन किया जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाओं में उत्तम है, परंतु वो उत्तम मर्यादाएं उन्होंने कहां से सीखी, इस ब्राह्मण जन्म में सीखी। तो हम साकार बाबा को देखते हैं, बाबा ने, मम्मा ने, हमारी दादियों ने कितनी ईश्वरीय नियमों का, ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन किया, और सिर्फ खुद ही पालन नहीं किया परंतु हम लाखों लोगों को वो सिखाया, एग्जाम्पल बन के हमारे सामने खड़ी होगी। साकार बाबा को तो अगर आप देखेंगे, ब्रजेंद्रा दादी हमेशा बताती थी कि अलौकिक जीवन तो छोड़िए परंतु लौकिक जीवन की मर्यादा भी बाबा कितनी पालता था, क्योंकि बाबा वैष्णव पंथी था। वैष्णव पंथी होने के कारण बाबा का खान पान पहले से ही शुद्ध था, कांदा लहसुन या शराब कबाब कुछ भी नहीं। और बाबा का जो सारा कनेक्शन था धंधे के कारण राजाओं का था, उदयपुर के राजा हैं, जयपुर के राजा हैं, इस साइड के सब राजा हैं खास बाबा के पास ज्वेलरी बनाने के लिए जाते थे, क्योंकि राजाओं की एक खास मर्यादा होती थी, उनका जब भी दरबार लगेगा वो पहली पुरानी ज्वेलरी नहीं पहनते, हमेशा हर दरबार में वो नई ज्वेलरी पहनते हैं। तो इसीलिए वो घड़ी घड़ी ज्वेलरी बनाते थे। और बाबा की विशेषता थी जो कोई डिजाइन नहीं बना सकता उस डिजाइन की बाबा ज्वेलरी बना के देते, इसीलिए सब इतने दूर दूर से भाग के कराची और कलकत्ते में बाबा के पास पहुंचते। बाबा पहले से ही बहुत उदार चित थे, उदाहरण मुहूर्त थे और उदार चित थे, इसीलिए जो भी ये राजाएं आते थे इनकी खूब खातरी करते थे। पर ये राजाएं हंसते थे बाबा के ऊपर, बाबा को कहते थे लकीराज बाबू आपकी पार्टी तो फीकी फीकी है, क्योंकि वो शराब और कबाब खाने वाले, शराब पीने वाले, तो उनको तो पिस्ते बादामी के बड़े नहीं अच्छे लगते, उनको तो वो अच्छा लगता। तो इसीलिए हंस के बाबा को बोलते थे आपकी लकीराज बाबू आपकी पार्टी फीकी रही। तो बाबा कहता था तुम मेरे को कागज के नोट देते हो और मैं तुमको सच्चे हीरे देता हूं, तो क्या तुम्हारे कागज के नोट के पीछे मैं मेरा धर्म छोड़ दूं? अरे धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, अगर धरती पर गिरना पड़े मरना पड़े तो भी धर्म नहीं छोड़ सकते। तो हम उस बाप के बच्चे हैं जो इतना मर्यादा वाला था। तो हमारे अंदर भी वो मर्यादाएं, हमारे ईश्वरीय कुल की मर्यादाएं, वो तो लौकिक कुल की मर्यादा इतना पालता था, अलौकिक कुल की तो बात ही मत पूछो। तो अभी हम देखते हैं बाबा ने हमें मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सबके लिए मर्यादाएं खींच के दिया है, श्रीमत दिया है, नियम मर्यादाएं बताई। हमारी यादगार जो है रामायण, उसमें सीता को लंका में क्यों जाना पड़ा सबको मालूम है। जिस समय उसने लक्ष्मण रेशा का उल्लंघन किया तो उसको रावण की सोनी लंका में जाना पड़ा। तो ये हमारा ही यादगार है जो लक्ष्य तक पहुंचने वाली श्रीमत है, उसका अगर मनसा से भी उल्लंघन होता है तो माया रावण उठा करके अपनी नगरी में ले जाते। अगर कबूल हो गए तो कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि बाबा ने हमें कौन सी मर्यादाएं खींच के दिया, मनसा के लिए क्या मर्यादाएं, मनसा की, क्योंकि मनसा हरेक बोल हरेक कर्म हरेक संस्कार इसका बीज है मनसा। जैसा सोचेंगे वैसा ही बोलेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा ही करेंगे। हरेक कर्म पहले मनसा में होता है संकल्प, फिर उसके बाद वाचा और कर्मणा में आता है। तो मनसा जो है वो समझो फैक्ट्री है, उसमें संकल्प चलते ही रहते हैं चलते ही रहते हैं। तो बाबा ने आके इस मनसा को कौन सा ऐसी लकीर खींच के दिया, कौन सा नियम बताया जो हमारी मनसा उल्टी नहीं चले पर सीधी चले, मर्यादा से चले। हमें ये देखना है कि ये जो मनसा की फैक्ट्री है इसको कैसा बंद किया जावे, उल्टी को सीधी कैसी बनाई जावे इसको। तो हमको ये करना पड़ेगा, जब फैक्ट्री को बंद करना होता है तो बाहर से माल लेना बंद कर देते, बाहर की खरीदारी बंद कर देंगे, माल ही नहीं आएगा, मटेरियल नहीं आएगा, कच्चा माल नहीं आएगा तो तैयार कैसा होगा माल। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छा नियम बना के दिया है, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो। सोच पीछे है, सबसे पहला नंबर है बुरा मत सुनो। आप देखेंगे इस अंतर्मुख बन जाओ, बाबा कहते हैं इस मुख के ऊपर ही हमारी सब मुख्य कर्म इंद्रियां हैं। ये हमें अंतर्मुख बनना है, माना यहां ठहरना, ये हमारा हमारी राजगद्दी है जिस पर हमें बैठना है। स्वराज अधिकारी सो विश्व राज अधिकारी। तो ये जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, आप आंखों को देखेंगे इसको दरवाजे बंद करने के लिए है ना, आपको नहीं देखना होगा तो बंद कर दो, मुझे नहीं बोलना होगा तो दरवाजा बंद, पर नहीं सुनना होगा तो। दोनों कान खुले हैं उसको दरवाजा नहीं है, है दरवाजा, उसको अंदर से दरवाजा लगाना पड़ेगा, बाहर कोई दरवाजा नहीं। आप देखो जब भी शहर में कोई भी घमसान होता है, आप जो भी भाई है आप लोगों को अनुभव है, सबसे पहले क्या बंद करते हैं, सबसे पहले अगर मार्केट में जाके देखेंगे तो दुकानों के शटर्स दरवाजे बंद करते हैं। अगर दुकानों के दरवाजे बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत लूटपाट हो जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो बाबा ने भी हम बच्चों को बताया है कि माया लूटपाट नहीं करे, इसीलिए ये दो कान माना दो कान बंद करो। ये दुकान है दो कान, इस दुकानों को बंद करेंगे फालतू माल आएगा ही नहीं, फैक्ट्री चलेगी नहीं तुम्हारी, इसके लिए इसको बंद करना सीख जाओ। जो मतलब की बात है वो सुनो, जिससे हमारी आत्मोन्नति नहीं है वो कभी भी सुनना नहीं। ये कितनी इम्पोर्टेंस है कान आपको मालूम है? स्कूल में भी जब बच्चों को सजा मिलती है तो क्या पकड़ते हैं? उनके कान ही पकड़ते हैं। जब भी कोई माफी मांगते हैं तो क्या पकड़ते हैं? कान ही पकड़ते हैं। तो ये कान इतने इम्पोर्टेंस है, जो ये ऐसा ऑर्गन्स है, इसको कंट्रोल रखने की बहुत आवश्यकता। इसीलिए बाबा ने हमको पहले पहले कहा कि बुरा सुनना बंद कर डालो। बुरा सुनना अर्थात ज्ञान की बातें सुनने के बजाय परचिंतन करना, परदर्शन करना, ये सब बंद कर। फिर बुरा देखना भी बंद कर डालो, क्योंकि जैसा देखेंगे वैसा मनसा चलेगी तुम्हारी, जैसा देखेंगे वैसा तुम बन जाएगी। फिर उसके बाद मुख का भी बाबा ने बताया, मुख के लिए भी बाबा ने नियम बना के दिया। अभी पहले हम देखते हैं मनसा। मनसा को ईश्वरीय मर्यादा है, मन मना भव की स्थिति में रहो। एक बाबा के बिगर दूसरा कोई भी याद नहीं आवे, इसीलिए अपने सर्व संबंध बाबा से जोड़ लो। मन को बाबा में लगा दो, मन को खाली नहीं रखो। कहा जाता है खाली मन शैतान का घर। अगर उसको खाली छोड़ दिया तो शैतान, माया रूपी शैतान आके बैठ जाएगा। इसीलिए मन को हमेशा बिजी रखो। किस में बिजी रखो? स्वचिंतन, स्वदर्शन। स्व का दर्शन करो। स्व का क्या दर्शन करो? कि मैं आत्मा इस समय कौन सी स्थिति में हूं, मेरे अंदर कौन सी खूबियां हैं, कौन सी कमियां हैं। स्व दर्शन करते रहो। देखो हरेक के घर में दो चीजें होती हैं, एक आईना होता है, एक विंडो होती है। आईना किसके लिए होता है? खुद का मुखड़ा देखने के लिए। विंडो किसके लिए होती है? बाहर देखने के लिए, दूसरों। तो इतना दिन हम बाहर ज्यादा देखते थे, खुद को नहीं देखते थे। अभी बाबा ने हमको कहा कि तुम्हें क्या करने का है, बाहर देखना बंद कर डालो। ये कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है, तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम स्व दर्शन करना सीख जाओ। तो जितना जितना हम स्व का दर्शन करते हैं उतना उतना हमारा स्वचिंतन चलता है। स्वचिंतन चलता है तो पर चिंतन पर दर्शन बंद हो जाते, जिससे क्या होता है, जिससे हमारी मनसा साफ होती जाती है, क्लीन होती जाती है, और बाबा की याद जो है वो पक्की होती जाती है। तुम्हें करना है तो ज्ञान का मंथन करो। जितना जितना तुम ज्ञान का मंथन करेंगे उतना उतना मक्खन निकलेगा। अगर ज्ञान का मंथन तुम नहीं करेंगे, क्लास सुना बहुत अच्छा लगा, अच्छा तो लगा परंतु उसके बाद अगर उसके ऊपर विचार नहीं किया तो भूल जाता है। भोजन अच्छा लगा परंतु वो हजम हुआ? अगर उसको आपने हजम नहीं किया तो आपको शक्ति नहीं मिलेगी, ब्लड नहीं बनेगा। तो उसी प्रकार हम जो सुनते हैं बाबा के महावाक्य रोज, या जो भी क्लासेस आदि सुनते हैं, इसके ऊपर विचार सागर मंथन करो। बाबा कहता था देखो बच्चे, जानवरों में भी अक्ल है। गाय थोड़ा समय एक घंटा एक घास खाती होगी, पर सारा दिन उसका मुंह चलता रहता है, रवंत करती रहती, उगारती रहती है उसको। अगर उसको उगारेगी नहीं तो पचा नहीं सकेगी उसको। तो वैसा ही तुम भी भले एक घंटा बाबा की मुरली सुनते हो, पर सारा समय वो बुद्धि में तुम्हारे आती नहीं, खास खास पॉइंट एक दो बात। तो क्या हो जाएगा? उससे हमारी मनसा स्ट्रांग होती जाएगी, पावरफुल होती जाएगी। तो ये हमारी मर्यादा है, मनसा को कैसे चलाना ये हमारी मर्यादा है। मन हमारा सदैव स्वच्छ रहे। भक्ति मार्ग में हम भगवान को कहते थे भगवान मेरे अवगुण चित्त पर नहीं धरना। अभी भगवान हमको कहता है बच्चे किसी के अवगुण चित्त पर नहीं धरना। वो कभी किसी के अवगुण चित्त पर नहीं धरते हैं। हमें भी अब किसी के अवगुण चित्त पर धर के, मन में धर के, उसका इम्प्रेशन रख के अपने मन को मैला नहीं करना है। मैला मन बाबा से नहीं लग सकता। जो ज्यादा परचिंतन करते हैं उनका बुद्धि का योग मन कभी बाबा से नहीं लगता है। बुद्धि भी नहीं लगती है, मन भी नहीं, क्योंकि उसमें ही समय जाता है, शक्ति उसमें ही नष्ट होती है। एक तरफ तो बाबा को याद करके शक्ति भरना, दूसरी तरफ क्या है, लीकेज, टाकी है पानी के, ऊपर से नल में से पानी आ रहा है और नीचे उसको होल है तो क्या होगा, पानी खलस हो जाए। तो बाबा से बुद्धि का योग लगा के शक्ति भर रहे हैं और मनसा में अगर होल है तो क्या हो जाएगा, वो शक्ति नष्ट हो जाएगी, फिर कमजोर हो जाएगी, फिर उससे रिजल्ट क्या हो, कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो घबरा जाएगा, अरे इतनी बड़ी परीक्षा आ गई, इतनी बड़ी बात आ गई, क्योंकि ताकत ही नहीं। इसीलिए हमारे को लीकेज को बंद करने की आवश्यकता है, परदर्शन परचिंतन को एकदम बंद करना है, ये हमको अपने साथ पक्का करना। तो बाबा ने ये हमारे को मनसा के लिए मर्यादाएं बताई हैं कि सोचना है तो क्या सोचो, ज्ञान का सोचो, सोचना है तो क्या सोचो, तुम आत्म उन्नति के बारे में सोचो, बाकी फालतू सोचना बंद करो। बाबा कहता है वो गवर्नमेंट कहती है बर्थ कंट्रोल करो, और ये हाई गवर्नमेंट कहती है संकल्प कंट्रोल करो। जिन्होंने संकल्प कंट्रोल कर लिया उन्होंने सब कुछ जीत लिया। कहा जाता है ना, मन जीते जगत जीत, तो संकल्प अगर कंट्रोल में आ गए तो सब तुम्हारी जीत ही जीत हो जाएगी। अभी वाणी, मनसा की मर्यादा समझ में आई, अभी वाणी की बाबा ने कौन सी मर्यादा बताई। वाणी के लिए बाबा ने हमको पक्का कराया, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, सत्य बोलो, असत्य कभी भी बोलना नहीं, क्योंकि तुम सच्चे बाप के बच्चे हैं, तुम्हारी वाणी सदैव सत्य होनी चाहिए, असत्य नहीं होनी चाहिए। और जितना हो सके उतना तुम कम बोलो। हम लोग क्या समझते, सामने वाला कम समझता है इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं। नहीं, कोई भी बात होगी तो हम ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है इसको ज्यादा नहीं समझ में आता है, इसको समझाना पड़ेगा। पर मेरे कोई समझता नहीं है कि मैं मेरी ताकत को वेस्ट कर रही हूं। इसीलिए बाबा ने कहा कम बोलो, क्योंकि ये जो बोल है ये बहुत अमूल्य है। बोलो, आप संधि विच्छेद करो, बो प्लस लो माना बीज बो, बोलना माना बीज बोना। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। आप मीठा बीज बोएंगे तो आपको मीठा फल मिलेगा। आप मीठा बोल बोलेंगे तो सामने वाले मीठा बोलेंगे। आप कड़वा बोलेंगे तो सामने वाले मीठा कैसा बोलेंगे। इसीलिए बोलो, तुम श्रेष्ठ बोल बोलो, श्रेष्ठ बीज बोलो, ज्ञान का बीज बोलो, सामने वाला का भी कल्याण, तुम्हारा भी कल्याण। और जितना बोलना है कम बोलो, धीरे बोलो। कोई बहुत जोर जोर से बोलते हैं, अरे इतना जोर से क्यों बोलते हैं, हमारी आवाज ही ऐसी है। बाबा कहता है ये माइक को भी ये स्क्रू है, बटन है कम ज्यादा करने को, तुम्हारे पास नहीं है। क्यों अपनी ताकत तुम वेस्ट करते हो, क्योंकि क्या है, बोलने से शारीरिक शक्ति भी जाती है और आत्मा की शक्ति भी जाती है। ये जो जबान है ये खट के ऊपर भी बिठाती है और पट के ऊपर भी बिठाती, ये ऐसी जबान। इसीलिए खट पर बैठे पट पर काहे को बैठे, उल्टा बोलेंगे तो क्या करेगी, पट में ही बैठना पड़ेगा। तो इसीलिए अपनी जबान को मीठा करो। कोई कोई कहते हैं बहन जी हम ना बहुत कम बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हम, कभी भी कभी कभी बोलते हैं, परंतु बहुत कम बोलते, ऐसा बोलेंगे सामने वाला जन्म भर रोता रहेगा। फायदा क्या हुआ कम बोलने का, इसीलिए बाबा को कहना पड़ा कम बोलो और मीठा बोलो, कड़वा नहीं बोलना कभी। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी शक्ति बच जाएगी। ये मुख जो है ना, ये कर्म इंद्रिय दो काम करती हैं, और तो देखने का ही आप काम करेगी, कान सुनने का काम, पर ये खाने का भी काम करती है, बोलने का भी काम करती है। इसीलिए बाबा ने इसको कंट्रोल में रखने के लिए क्या किया, सात्विक भोजन करो, क्योंकि अन्न का मन के ऊपर असर होता है। सात्विक भोजन करो, सात्विक भोजन खाना ये नियम है, पर नियम के साथ बाबा ने संयम भी सिखाया। शुरू शुरू में यज्ञ में जब 350 भाई बहने रहते थे, तो रोज रात को मम्मा कचेरी लेती थी, बाबा नहीं आता था कचेरी में। बाबा को बोलते थे, बाबा आप क्यों नहीं कचेरी में आते, आप आओ ना। तो बाबा ने बताया, देखो मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ धर्मराज, और जिनको झूठ बोलने की आदत है वो मेरे से भी झूठ बोलेंगे, तो उनको कितना दंड मिलेगा, 100 गुना दंड मिलेगा। ऐसा कोई बाप होगा जो समझे मेरे बच्चे को 100 गुना दंड मिले, तो मैं कैसा हूं कचेरी में बताओ, इसलिए मैं नहीं आता हूं, तुम्हारी मम्मा ही तुम्हारी कचेरी करे। तो मम्मा जब कचेरी करती थी तो मम्मा प्रश्न पूछती थी, साथ में लास्ट में ये भी प्रश्न पूछती, किसी ने पाप किया तो बताओ, भूल किया तो बताओ, और खुद को नहीं समझ में आया, किसी ने देखा, किसी ने भूल किया पर उसको नहीं समझा, दूसरे को समझा तो वो बतावे, परंतु आपस में फिर रिपीट नहीं करना, किसी को कुछ बोलना नहीं, पक्का कराते। फिर मम्मा लास्ट में पूछती थी भंडारी से, आज भोजन पूरा हुआ, तो कभी रोटी बच जाती थी, कभी रोटी कम हो जाती थी। अभी रोज 350 भाई बहने रहने वाले, पकाने वालों को, परोसने वालों को मालूम होता है कौन कितना खाता है, उस अनुसार रोटियां पकाई गई, कभी बच जाएगी बहुत सारी रोटियां। तो मम्मा पूछती थी, आज रोटी क्यों बच गई, अच्छा किस किस ने कम खाई तो हाथ ऊपर करते थे, तो तुमने क्यों एक रोटी कम खाई, दो खाने वाले एक क्यों खाई, मम्मा आज सब्जी अच्छी नहीं बनी। अभी आप बताओ 350 रोटी बच जावे तो क्या किया जावे, और कभी रोटी कम हो जाती थी, मम्मा बोलती थी क्या हो गया आज रोटी क्यों कम हो गई, तो बोला मम्मा सब्जी बहुत अच्छी थी तो हमने एक रोटी ज्यादा खा लिया। तो मम्मा इसके ऊपर समझाती थी कि देखो आपका लक्ष्य अलग है, पहले हम लोग जो जीते थे वो खाने के लिए जीते थे, अभी जीने के लिए खा रहे हैं, समझ में आई बात। तो पहले ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं, बाबा कहता है खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं, समझा, तुम भोजन भी खाओ शरीर को चलाने के लिए पेट्रोल दे रहे, बाबा की याद में खाओ, वो भी विधि है सारी, वो भी सारा नियम है, बाबा की याद के बगैर नहीं खाना, नहीं तो हमारी गुलजार दादी हमेशा कहती थी बाबा को भूल करके भोजन खाते तो माया ही भोजन खा जाती है, और वो फिर बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तुम्हारे साथ ही लड़ती है, इसीलिए बाबा की याद में भोजन खाओ, जैसा अन्न वैसा मन बनेंगे। तो ये नियम है ना हमारा, ये मर्यादा है ना, वो मर्यादा हमको छोड़ने का नहीं। तो बाबा ने देखो हमारे को वाणी की भी मर्यादा बताई, अभी कर्म की मर्यादा, कर्म की मर्यादा, कर्म का नियम क्या है, कर्म की हमारी मर्यादा क्या, ईश्वरीय मर्यादा, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख के और करेंगे, है ये मर्यादा, या कभी ऐसा कहते हो जैसा कर्म और करेंगे उसको देख के मैं करूंगा, नहीं, हमेशा हमको ये ध्यान में रखना है। ब्राह्मणों को ब्राह्मण माना सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, ब्राह्मण माना ब्रह्माचारी, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले माना ब्राह्मण। तो इसीलिए हमको ये करना है कि हम जैसा कर्म करेंगे हमको देख करके और करेंगे, इसीलिए हमें अपने कर्मों के ऊपर बहुत ध्यान देना। बाबा ने क्या कर्म सिखाए हमारे को, बाबा ने हम बच्चों को कर्म सिखाए सुख दो सुख लो। अभी आधा स्लोगन याद रखते हैं बहुत लोग, भाई हमारे को अपने मुख से अपने कर्मों से किसी को दुख नहीं देना है, सुख देना, परंतु अगर कोई दुख देता है तो फट से स्वीकार कर लेते, फलाने ने ऐसा किया ना, मेरे को बहुत दुख हुआ। अरे पर बाबा ने तुमको बोला तुमको दुख लेना नहीं, फिर तुमने क्यों ले लिया? दुख दो नहीं पर दुख लोगी तो नहीं। अगर समझो कोई हमारे को दुख देता है और मैंने नहीं लिया तो उसके पास ही रहेगा ना। परंतु क्या करते हैं, जल्दी स्वीकार कर लेते, जल्दी डिस्टर्ब भी हो जाएंगे, थोड़ी बात में डिस्टर्ब हो जाएंगे। तुमने क्यों क्रोध किया? बोले वैसा हमारे को व्यंजी क्रोध नहीं आता है, पर जब कोई झूठ बोलता है ना तभी हमको बहुत क्रोध आता है। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है या रंग है? अभी देखो उसने क्रोध किया, पाप किया, सॉरी उसने झूठ बोला पाप किया, और मैंने क्रोध किया वो ये क्या किया, पुण्य किया। अभी क्या हुआ, भूल उसने किया झूठ बोलने की, सजा मेरे को मिली। कैसे? हमने क्रोध किया तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हमारी पल्पिटेशन बढ़ गई, हमारा शुगर बढ़ गया, तो सजा किसको मिले? और भूल किसने किया? सामने वाले में, ये ज्ञानी है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे सोच समझ के करो जो भी करना। उसने दिया, उसने क्रोध किया, झूठ बोला तो तुमको क्रोध आ गए? अरे बोला तो बोला, जाके वो जाने उसका काम, उसको समझाओ तुम, नहीं समझे तो छोड़ दो, जाने तो आप ही धर्मराज समझाएगा, तुम्हारा क्या जाता। तो ऐसी छोटी छोटी भूलें करके हम अपनी मर्यादा को तोड़ते रहते और दुखी होते थे, अपनी शक्ति को नष्ट करते। तो बाबा ने हमारे को कर्म सिद्धांत सिखाया है, तुम जैसा कर्मों का बीज बोएगे, कर्म क्षेत्र है, जैसा कर्मों का बीज बोएगे वैसा तुम्हारे को फल मिलने वाला। बाबा तो कभी कभी बहुत मजे की बात करता है, तुम्हारे को अगर समझो क्रोध करता है सामने वाला, तुम उसके ऊपर फूल चढ़ाओ। मैंने कहा बाबा फूल चढ़ाने को जाएंगे तो उसको और भी गुस्सा लगेगा, ये क्या फूल चढ़ाते हमारे ऊपर, फूल चढ़ाओ माना मीठा बोलो उससे, तुम नहीं क्रोध करो, तुम अपने को कंट्रोल करो, क्योंकि ये है विकार जो है ना, ये चूत की बीमारी है। एक ने क्रोध किया ना तो दूसरे को भी लग जाता है तुरंत, तीसरे को भी लग जाता है, इसीलिए किनारा करना अच्छा है, अगर चूत लगती हो संभालना अच्छा है, खुद को संभालना है, हमको सेफ रखना है अपने को, हम अपने को सेफ रखेंगे तो विश्व को सेफ कर सके। तो इसीलिए हमारे को हमेशा ध्यान देना है कि हमारे कर्म ऐसे हुए, हमारे कर्मों से बाप दिखाई पड़े। जो बच्चे गुणवान होते हैं ना, तो सामने वाले अज्ञान काल में भी जो गुणवान होते हैं, होशियार होते हैं, उनको देख के कोई भी पूछता है ये किसका बच्चा है, पूछता है नहीं पूछता, तुरंत माँ बाप का नाम आता है, बाप का ज्यादा आता है, माँ का कम आता है। तो हमारे अंदर भी वो गुण होवे जो बाबा के हैं, हमें बाप समान बनना है। हम सभी का लक्ष्य तो यही है ना, हमें संपूर्ण बनना है, हमें बाप समान बनना है, हमें फरिश्ता बनना है। तो जो बाबा ने किया वही हमको भी करना, बाबा ने करके बताया, बाबा ने प्रवृत्ति कहाँ छोड़ी, बाबा के साथ सब रहते थे, सब रहते थे, जसोदा रहती थी, सब रहते, बहू रहते, बेटे सब रहते, परंतु बाबा कितना न्यारा और प्यारा रहा। बाबा ने कभी कहा ये यज्ञ मेरा है, आप देख लो बाबा की सारी हिस्ट्री आप लोगों ने सुनी होगी, बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा ये यज्ञ मेरा है। बाबा हमेशा कहता था ये शिव बाबा का रुद्र यज्ञ है। जब भी हम लोग बाबा के साथ ब्रह्मा भोजन में बैठते थे ना, बाबा सामने बैठता था ऐसा गोल करके बैठते थे, तो बाबा बोलता था शिव भोलेनाथ के भंडारे का ब्रह्मा भोजन, शिव भोलेनाथ का ब्रह्मा भोजन शिव बाबा को याद करके स्वीकार करो, शिव भोलेनाथ का ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा का भोजन है परंतु भंडारा किसका है, शिव बाबा का। तो बाबा ने प्रवृत्ति वालों को ये पक्का कराया हुआ है, आप भले प्रवृत्ति में रहते हो पर हमेशा ये ख्याल में रखो कि हम शिव भोलेनाथ के भंडारे का खा रहे हैं। सुना, ऐसा नहीं समझो कि हम कमाते और खाते हैं। अरे तुम क्या कमाएगे, देगा नहीं तो क्या कमाएंगे, दाता कौन है। तो इसीलिए अपने को गृहस्थी नहीं परंतु अपने को ट्रस्टी समझ करके चलो। ये सारा बाबा का है। बाबा देखो, बाबा के ऊपर कितनी बड़ी परीक्षा आई। अचानक यज्ञ में खुड़खुड़ हो गई, कुछ भी नहीं बचा। 350 बच्चे सामने, खाने के लिए कुछ नहीं, परंतु बाबा की स्थिति देखो कितनी। बाबा निश्चिंत, भंडारा बाबा का है, बच्चे बाबा के हैं, उसको फिक्र है, मेरे को क्या फिक्र। और होता भी ऐसा ही था। लास्ट मोमेंट 11 बजे आके भोजन पकाने वाली पूछेगी, बाबा क्या बनाऊं, कुछ भी नहीं है डब्बों में, क्या बनाई। बाबा कहता था 11 बजे आना, 10 बजे आएगी। 11 बजे पोस्टमैन आएगा, बिगर नाम का मनी ऑर्डर दे के चला जाएगा। बाबा बुलाएगा जो खाना पकाने वाले, उनको खरीद करने वाले, उनको बोलेगा जाओ जाके बाजार में से आटा और दाल ले आओ, दाल बछड़े वाल, जिसको बच्चे ज्यादा होते ज्यादा पन डालो दाल में, और क्या है। और पूरे 12 बजे बाबा को भोग भी लगेगा, बाबा मम्मा सहित सभी बैठ करके भोजन खाएगी। ये क्या कमाल है। शिव की तो कमाल है, पर ब्रह्मा की कोई कमाल कम नहीं है। उसने कभी भी बाबा की डिक्शनरी में मैं और मेरा ये कभी भी शब्द नहीं। बाबा का है, बाबा का है, मैं बाबा का हूं, ये सब कुछ बाबा का। बच्चे बाबा के हैं, बाबा को फिक्र है, मेरे को क्या फिक्र। तो फॉलो फादर करना माना क्या, ब्रह्मा कुमार बनना, ब्रह्मा कुमारी बनना माना क्या है, बाप जैसा बनना ना। सबसे बड़ी सेवा कर्मों की सेवा। हमारे कर्मों के द्वारा बाप दिखाई पड़े, हमारी सूरत से उसकी सीरत दिखाई पड़नी चाहिए, गुण दिखाई पड़नी। बाबा ने हम बच्चों को शिक्षा दी हुई है, समझाने दी हुई है कि बच्चे तुमको, क्योंकि व्यवहार में आते हैं तो किस रीति से एक दो के साथ व्यवहार में आओ, संबंध संपर्क तुम्हारा आपस में कैसा रहे, ज्ञानी अज्ञानी तुम साथ में रहते, बड़ों को हमेशा तुम रिस्पेक्ट दो, सम्मान दो, साथ वालों का रिगार्ड रखो तुम, और जो छोटे हैं उनको प्यार दो, जो भी बुजुर्ग है उनका रिगार्ड रखना तुम्हारा धर्म, उनको संभालना तुम्हारा धर्म। हमारे इन कर्मों से आज दुनिया में हम देखते हैं ना क्या लगा पड़ा है, बुजुर्गों की क्या वैल्यू है उनके पास, परंतु यहां बाबा हमारे को वैल्यू सिखाता है। बाबा ने एक बार बहुत अच्छी बात बताई। बाबा ने कहा देखो, दवाई कौन से पत्तों की बनती है, जो पत्तों की दवाई होती है ना वो कौन से पत्तों की बनती है, नए पत्तों की नहीं होती, पुराने पत्तों की दवाई बनती। तो हम सब कल्प वृक्ष के पत्ते हैं ना, तो इसीलिए हमारे द्वारा सबको क्या मिलना चाहिए, हमेशा हमें ये ध्यान में रखना है। बाप को हमें प्रत्यक्ष करना है, सिर्फ हमको खुश नहीं होना है, हमको इतना बरस हो गया, इतना बरस हो गया। आप जितने पुराने होते उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि आने वाले भी देखते हैं, आपके साथ वाले भी देखते हैं, अरे ये इतने वर्षों से चल रहा, फिर इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, कंपटीशन करना चालू कर दे। इसीलिए मुझे बदलना है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना। जब तक हम अपने में परिवर्तन नहीं लाएंगे, दूसरों में परिवर्तन ला नहीं सके। तो अमृत वेले से लेके जो बाबा ने दिनचर्या दिया है हमको, आप घर को घर नहीं समझो, आप शिवालय सम, मेरा घर है। मेरा बोला तो गया, मैं और मेरा ये दो माया को आने के दरवाजे हैं, इसको डबल लॉक लगा दो आप। चोरों से बचने के लिए डबल लॉक लगाए जाते हैं ना, एक है बाबा और दूसरा है सेवा। डबल लॉक लगाएंगे तो माया की ताकत नहीं, विषाद नहीं है वो आ गया आपके पास। इसीलिए कभी भी ये नहीं कहो मेरा घर मेरा घर, कहे मैं बाबा का हूं पर ये बच्चा मेरा, ये बच्ची मेरी है, फलाना मेरा है। अरे मेरा मेरा क्या है, मेरे मेरे का ही तो फेरा है। हाँ, बलि किसकी चढ़ती है? शेर की बलि चढ़ती है? बलि किसकी चढ़ाते हैं? बकरे की बलि चढ़ाते जो सारा दिन मैं करता है, तो माया भी उसको ही बलि चढ़ाती है जो मैं करते हैं। मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे है। अरे करण करावन हार कहाँ गया? देखो मामा मम्मा के हर बोल में क्या होता था, मम्मा हमेशा क्या याद सिखा देती थी हमको, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, वो हुक्म चलाए रहा है और हम कठपुतलियां नाच रही। कठपुतली को क्या होता है, वो थोड़ी नाच सकती, उसमें कोई जान होती है क्या? परंतु उसको नचाने वाला ऊपर बैठा हुआ होता है, रस्सी भी लेके नचाता है धागा लेके, वैसा वो हमको नचा रहा, हमको कहाँ आता है नाच। तो इसीलिए सदैव बाबा 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 ने कहा ना, तुम भाषण करते हो ना हजार बार ही बोलो बाबा बाबा बाबा, तो सामने को भी बाबा याद आ जाते सामने वाले, मैंने ऐसा किया, मैंने क्या किया तुमने। अगर हमारे में वो ताकत होती थी, वो अक्ल होती थी, वो समझ होती थी, हमारा ताज चला गया, तिलक चला गया, राजा ही चली गई, सब कुछ चला गया, ये अक्ल की बात हुई? सब गया ना हमारा, जो बात दिया वो कुछ भी नहीं रहा। इसीलिए सदैव बाबा की बलियारी गाते रहो, श्वासो श्वास बाबा को याद करो, क्योंकि क्या है इस समय सब धीरे धीरे आप देखेंगे ना, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है सब बाजार ठंडे होते जा रहे, सब बाजार ठंडे हो जाएंगे, मौत का बाजार गर्म हो जाए। और अभी दिखाई पड़ता है ना मौत का बाजार गर्म, मौत तो जैसा आग खोल के बैठी है, आओ तो मैं खाऊं तुमको, होलसेल मौत। पहले कहां होता था ऐसा, दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए हम ब्राह्मणों को बहुत ध्यान रखना है कि मुझे क्या करना है। मम्मा से किसी ने पूछा, मम्मा आप इतनी छोटी आयु में मम्मा कैसे बन गई? बाबा भी उसको मम्मा बोलते, उनकी माँ भी उनको मम्मा बोलते, आप मम्मा कैसे बनी? मम्मा कहती मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को सदैव ये याद रहता है कि ये ही मेरा श्वास अंतिम श्वास, अभी और क्या करेगी बताओ। इसे जो समझेगा ये मेरा श्वास अंतिम श्वास है, उसमें कितनी बेहद की वैराग वृत्ति हो। तो हम क्या समझते हैं, हम कितना बरस चलने वाले? हमारे ब्राह्मणों को किन किन को बड़ी फिक्र होती है दुनिया की, पूछते रहेंगे बहन जी कभी विनाश होने वाला है, कभी विनाश होने वाला है। अरे तुम उस विनाश की चिंता कर रहे, खुद की तो चिंता करो, कभी जाने वाले हो? खुद का जाने का ठिकाना ही गया, एक सेकंड में उड़ के चले जाएंगे। इसीलिए पहले से ही क्या करना है, हमारे को तैयारी करना है जाना, अपने हाथ भर तू करके जाना है, हमको हाथ खाली करके नहीं जाना। तो इसीलिए प्रवृत्ति में रहो परंतु निवृत्त रहो, न्यारे रहो, जितना जितना न्यारे रहेंगे उतने प्रभु के प्यारे बनते जाएंगे। फंस के नहीं रहो, क्यों कमल पुष्प, क्यों प्रवृत्ति वालों के लिए क्यों सिंबल कमल पुष्प दिया जाता है? कमल का फूल कीचड़ में रहते उससे न्यारा रहता, तो वैसे ही घर गृहस्थ में रहते हुए भी उससे न्यारे और बाप के प्यारे बन के चलना। जब लक्ष्य ही हमारा इतना ऊंचा है तो फिर लक्षण भी हमारे वैसे ही होने चाहिए कि हम एकदम अलिप्त है। सब अपने को चेक करना इस भट्टी में अंदर से, कोई किसी को नहीं कर सकता है, खुद को ही करना पड़ता है। मेरी स्थिति क्या है, मेरी स्थिति अलिप्त है? आज भी बाबा ने देखो मोह के ऊपर कितना सुना है, सचमुच हम नष्ट मोह है, स्मृति लब्धा है, जब तक नष्टम हुआ नहीं तो स्मृति लब्ध नहीं हो सकती। इसीलिए अपनी चेकिंग बहुत आवश्यक है। चेकिंग करने वाला ही अपने को चेंज कर सकता, जो चेकिंग नहीं करता है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो मुझे परिवर्तन होना है, मुझे मरना है, मुझे बाप समान बनना है। तो इतना ऊंचा लक्ष्य रखेंगे और बाबा ने कितना सरल हमको सब कुछ करके दिया है और रास्ता बताया है हमको, नया रास्ता गलियां नहीं ढूंढने की, पर मत मन मत ये गलियां हैं, इधर नहीं जाना हमको, श्रीमत के हाईवे पर से जाना है। बाबा जिस रास्ते पर गया उस रास्ते से हमको जाना है, सीधा ही सीधा रास्ता है। उसके पद कमलों के ऊपर आप पद रखते जाओ, पैर रखते जाओ और चलते जाओ। बाबा ने रास्ता बता दिया है, इसीलिए हमको जो बाबा ने कहा है वो हमको करके बताना है, क्योंकि हम बाबा के सुपातर बच्चे हैं, लायक बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। तो हमेशा इन बातों को ध्यान में रखते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को ध्यान में रखे अपनी जो संपूर्ण अवस्था है उसको हम सहज प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। दीदी जी ने बहुत ही सुंदर विधियां, छोटी छोटी विधियां बताई हैं और बहुत सारी हैं, अगर आप ध्यान से उनको रिवाइज करेंगे तो बहुत सारी विधियां बताई हैं जिनके द्वारा हम गृहस्थ में रहते हुए भी अपनी तपस्या को संपूर्णता की मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। एक बात दीदी जी ने जो कही, हम सब कठपुतलियां हैं, तो मुझे गीत की दो लाइन याद आ रही हैं जिसमें वो कहते हैं कि बोल री कठपुतली डोरी कौन संग बांधे, सच बतला तू नाचे किसके लिए। कठपुतली की डोरी बंधी होती है ना, तो कठपुतली की डोरी किसके संग बांधे, तो हमने तो बाबा के संग अपनी डोरी बांधी है ना, हम उसके लिए ही करते हैं, बाबा ही हमारे से कराते हैं। अगर ये भी स्मृति रहे तो हम जरूर अपनी इस तपस्या में सफल होंगे। और इसलिए गीत की दूसरी लाइन कहती है कि बावरी कठपुतली डोरी पिया संग बांधे, मैं नाचू रे अपने पिया के लिए। तो कौन पिया है? शिव बाबा। हम भले आपस में युगल हैं लेकिन हमारा युगल कौन? शिव बाबा है। तो हम सब युगल हैं बाबा के, बाबा की सजनियां हैं। और ऐसी सुंदर सुंदर युक्तियां दीदी जी ने हमें बताई हैं बहुत ही सुंदर रीति से। एक बार फिर हम दीदी जी का बहुत बहुत आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं।